लोकसभा की शक्तियां और कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की शक्तियों और कार्यों को निम्नलिखित शीर्षकों में बांटा जा सकता है। एक, वैधानिक शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संघीय सूची, समवर्ती सूची, शेष विषयों और कुछ विशेष स्थितियों में राज्य सूची में सम्मिलित विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि साधारण बिल पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, परंतु फिर भी 95% बिल पहले लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। साधारण बिल का दोनों सदनों द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। यदि किसी साधारण बिल के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद पैदा हो जाते हैं और 6 मास तक दूर नहीं होते, तो राष्ट्रपति मतभेदों को हल करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। यदि संयुक्त बैठक में मतभेद हल नहीं होते तो बिल अस्वीकृत हो जाता है। पेज 204। दो, कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। संविधान की धारा 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप में लोकसभा के सामने उत्तरदायी बनाया गया है। अतः मंत्रिपरिषद लोकसभा में बहुमत के विश्वास तक अपने पद पर रहती है और विश्वास खोने पर इसको पद छोड़ना पड़ता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद को लोकसभा के जीवन और मृत्यु पर पूरा अधिकार है। इसके अतिरिक्त लोकसभा मंत्रियों से प्रश्न पूछकर, बाय आस्किंग क्वेश्चन, स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉल अटेंशन मोशन, निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन, कटौती प्रस्ताव, कट मोशन तथा अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन आदि पेश करके भी मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी बनाती है। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं तथा उन्हें अपने प्रत्येक कार्य के लिए लोकसभा के समक्ष उत्तरदायी रहना पड़ता है। तीन, वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स। वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा की स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। धारा 109 के अधीन वित्तीय बिल पहले लोकसभा में पेश किया जाना अत्यंत आवश्यक है। लोकसभा द्वारा पास किए गए धन बिल को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है तथा 14 दिनों के समय गुजरने के पश्चात धन बिल राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पास समझा जाता है। अतः इस प्रकार देश की समस्त वित्तीय नीति पर लोकसभा का अधिकार है। चार, न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। लोकसभा को निम्नलिखित न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। एक, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग, इम्पीचमेंट, संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है तथा महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पास हो जाने के बाद इन अधिकारियों को पद से मुक्त कर दिया जाता है। दो, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अपराध ऊपरी सदन में लगाए जाते हैं, परंतु उसको पद से अलग करने के लिए अभियोग प्रस्ताव का लोकसभा द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। तीन, लोकसभा के सदस्य अपने किसी भी सदस्य के विरुद्ध सदनों का अनुशासन भंग करने पर कार्यवाही कर सकते हैं। 19 दिसंबर 1978 को लोकसभा ने श्रीमती इंदिरा गांधी को सदन की मर्यादा भंग करने के दोष में दोषी होने पर लोकसभा की सदस्यता से हटा दिया था। लोकसभा ने 27 मई 1981 को एक प्रस्ताव द्वारा 1978 में श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध पास किए प्रस्ताव को रद्द कर दिया। इसके बाद 23 दिसंबर 2005 को संसद द्वारा उन 11 सदस्यों को, जिन्हें प्रश्न पूछे जाने के बदले में रिश्वत लेने, कैश फॉर क्वेरी स्कैम के दोष में दोषी पाया गया था, को लोकसभा की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था और 10 जनवरी 2007 को दिए गए निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संसद के इस अधिकार को उचित ठहराया गया था। 14 मार्च 2006 को लोकसभा द्वारा सदन के 4 ऐसे सदस्यों को 22 मार्च 2006 तक सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि वह स्थानीय क्षेत्र विकास कोष, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का दुरुपयोग करने के दोषी पाए गए थे। चार, लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल तथा मुख्य चुनाव कमिश्नर के विरुद्ध अभियोग प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को इन अधिकारियों को पद से अलग करने की सिफारिश कर सकती है। पांच, चुनाव संबंधी शक्तियां, इलेक्टोरल पावर्स। लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इसके अतिरिक्त यह अपने सभापति तथा उपसभापति, जिन्हें स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर कहा जाता है का चुनाव भी करती है। 6. संवैधानिक शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव पहले संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है तथा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति मिलने पर ही संवैधानिक संशोधन बिल पास समझा जाता है। कुछ संवैधानिक संशोधनों पर 1/2 राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल आर्टिकल 75(3) पेज 205। यद्यपि संविधान के अनुसार संवैधानिक संशोधन संबंधी बिल पर दोनों सदनों के मध्य पैदा हुए मतभेदों को समाप्त करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की व्यवस्था नहीं है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ शंकरी प्रसाद वर्सेस द इंडियन यूनियन के मुकदमे में निर्णय दिया था कि संवैधानिक संशोधन एक वैधानिक विधि है तथा इसके संबंध में दोनों सदनों के मध्य पैदा होने वाले मतभेदों को समाप्त करने के लिए वही विधि अपनाई जाएगी जो साधारण बिलों के संबंध में पैदा हुए मतभेदों को समाप्त करने के लिए अपनाई जाती है। 7. नीतियों पर स्वीकृति अप्रूवल ओवर पॉलिसीज। राज्य प्रबंध चलाने के लिए निर्माण का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा बनाई गई नीति पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है, अतः लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर नीतियों पर स्वीकृति देती है। 8. आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति अप्रूवल ओवर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। संविधान की धारा 352, 356 तथा 360 के अधीन राष्ट्रपति को क्रमशः राष्ट्रीय, संवैधानिक तथा वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है, परंतु राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा पर 1 महीने के अंदर अंदर तथा संवैधानिक और वित्तीय आपातकाल की घोषणा पर 2 महीने के अंदर अंदर संसद की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, अतः लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर आपातकाल की घोषणा पर स्वीकृति देती है। 9. फुटकल शक्तियां मिसलेनियस पावर्स। ऊपर लिखित कार्यों के अतिरिक्त लोकसभा द्वारा राज्यसभा के साथ मिलकर निम्नलिखित फुटकल कार्य भी किए जाते हैं। 1. राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर स्वीकृति देना। 2. राज्यों की सीमाएं बदलना, नए राज्य स्थापित करना तथा पुराने राज्यों के नाम बदलना। 3. सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करना। 4. संघीय संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताओं में परिवर्तन करना। 5. संसद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते निश्चित करना। 6. 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित करने की व्यवस्था करना। 7. राज्य विधान परिषदों को समाप्त करने तथा पुनः स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पास करने। 8. संघीय लोक सेवा आयोग, कंट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल तथा वित्त आयोग आदि द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों पर विचार करना इत्यादि। लोकसभा की स्थिति पोजीशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा की ऊपर लिखित शक्तियों को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह एक शक्तिशाली सदन है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में इसके सामने उत्तरदायी है तथा उसके विश्वास तक पद पर रहता है। बजट पर लोकसभा को अंतिम अधिकार प्राप्त है क्योंकि ऊपरी सदन बजट के पास करने में केवल 14 दिन की देरी ही डाल सकता है। इसके अतिरिक्त शेष सभी क्षेत्रों में भी लोकसभा को राज्यसभा के मुकाबले में श्रेष्ठता प्राप्त है। डॉ एमपी शर्मा ने ठीक ही कहा है कि यदि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। वास्तव में सभी व्यापक उद्देश्यों के लिए लोकसभा ही संसद है। इफ द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑर्गन ऑफ द स्टेट, द लोकसभा इज द सुप्रीम ऑर्गन ऑफ इट्स पार्लियामेंट। इन फैक्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज इट इज पार्लियामेंट। डॉ एमपी शर्मा। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया सदन है, जिस कारण इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ये लोगों के हितों का प्रत्यक्ष रूप में प्रतिनिधित्व करता है तथा लोगों के सामने उत्तरदायी भी रहता है।